यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज
बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. बहुत ही रमणीक स्थान है ये कपिलधारा तीर्थ. एक बार हम लोग यहाँ पर बहुत साल पहले आए थे, तब यहाँ पर सब मिट्टी थी और इसी पेड़ के नीचे हम बैठे थे. फिर 2008 में आए थे, फिर अभी आ रहे हैं. तो ये बहुत ही पौराणिक स्थान है, त्रेता युग का स्थान है ये, एक्चुअली सत्ययुग का स्थान है. यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही भी है, थोड़ा सा उसका गलत भी है, क्योंकि सबसे पहली जो लीला यहाँ पर हुई है, जितने आप जागरूक रहेंगे उतनी हमें आज धारा बहेगी, कपिल धारा तीर्थ तब तक बहती रहेगी जब तक आपकी पलकें खड़ी रहेंगी. हरि बोल. तो स्थान से ही आपको पता चलता होगा कि इतना पवित्र स्थान है. तो बहुत सुंदर कथा भागवत में आती है. अभी अभी हमारे भक्ति वेदांत अस्पताल में ये सुबह की प्रार्थना में ये अध्याय समाप्त हुआ, कपिल भगवान द्वारा देवाहुति को उपदेश. अभी देवाहुति अगले अध्याय में 33वें अध्याय में अभी भगवान कपिल देव जो उनके पुत्र हैं उनका अभी स्तुति कर रही है. लेकिन कपिल देव ने जो उपदेश किया है वो भी पिछले अध्याय में 32वें अध्याय में समाप्त हुआ है. तो बहुत ही सुंदर कथा है ये हमारे शास्त्र में भागवत जी में. आप सब ब्रह्मा जी को जानते हैं, ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव हैं इस सृष्टि के, और फिर उनके पुत्र हैं स्वयंभू मनु. स्वयंभू यानी स्वयं ब्रह्मा, स्वयंभू मतलब भगवान के पेट से नाभि से जिनका जन्म हुआ है, और स्वयं भूव मनु यानी कि स्वयं भू के पुत्र जो मनु हैं. कितने मनु होते हैं सब मिलकर? 14 मनु होते हैं. एक एक मनु कितना समय का राज्य करते हैं?
एक मनवंतर.
71 दिव्य युग यानी 4 युगों से मिलकर एक कल्प बनता है, इसको दिव्य युग भी कह सकते हैं या कल्प कह सकते हैं. और 4 युग मिलकर कितना समय होता है?
16,84,000.
नहीं,
4 युग 16,84,000 या 32,000.
नहीं,
17,43,20,000.
ये 4 युग मिलकर इतने वर्ष होते हैं. इसको कैसे याद रखते हैं? बहुत सिंपल है, 4,32,000 ये आप याद रखेंगे तो बाकी सब आपको आ जाएगा. 4,32,000 का एक कलयुग होता है, उसका डबल करेंगे तो द्वापर युग होता है, ट्रिपल करेंगे तो त्रेता युग होता है, और 4 बार करेंगे तो सत्ययुग बन जाता है. तो 4, 3, 2, 1 बन के कितने होते हैं? 10 होते हैं. इसको 10 बार गिनेंगे तो एक दिव्य युग का समय आ जाएगा. ऐसा समझे आपको, 4,32,000 years into 10 is 43,20,000 years. तो ऐसे 71 दिव्य युग का कालावधि एक मनु का कालावधि होता है. और ऐसे कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं. तो इसमें से एक मनु है जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो स्वयंभू मनु उनका नाम है. तो स्वयंभू मनु उस समय जब मनु के रूप में थे तो विश्व के ब्रह्मांड के राजा थे वो, मतलब ऐश्वर्य, संपत्ति, प्रभाव सब कुछ उनके पास प्रचुर मात्रा में था, और उनको एक देवी समान कन्या थी, इसका नाम था क्या?
देवहूति।
और देवहूति इतनी सद्गुण संपन्न थी और इतनी सुंदर थी, कैसे कहते हैं कि जब वो छोटी सी बालिका थी, जब अपने महल के छत पर खेला करती थी, तो उसका सौंदर्य देखने के लिए स्वर्ग लोक में विमान में बैठकर देवता आते थे और विमान से बेहोश होकर गिर जाते थे काम वासना के प्रभाव से। इतनी सुंदर थी वो जब बालिका थी, ऊपर भी नहीं हुई थी, तब उसके महल के ऊपर हवा में हमेशा देवताओं के विमान मंडराते थे केवल देखने के लिए उसको, जब वो छत पर गेंद खेला करती थी, छोटी सी कन्या थी। ऐसे उसके सौंदर्य का वर्णन दिया है, मतलब पिता के कुल के रूप से, अपने सौंदर्य के रूप से, अपने गुणों के रूप से, सब तरह से वो सर्वगुण संपन्न थी, बहुत योग्य लड़की थी वो, बहुत ही श्रेष्ठ लड़की थी। तो जब उसका विवाह का समय आया, तभी राजा है वो, तो वो कौन से प्रकार का लड़का ढूंढेगा बताइए आप? कोई राजा का लड़का होना चाहिए, उसके बराबर का होना चाहिए, कम से कम अच्छा गुण का होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, सुंदर तो लड़की भी सुंदर है। इसे हमारे जनक महाराज ने क्या किया, इसे धनुष उठाया तो कम से कम धनुष उठाने वाला ही लड़का चाहिए, कम से कम उसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन कम से कम तो इतना होना चाहिए। ऐसा हर एक लड़के का पिता जो है सोचता है कि मेरी लड़की जैसी है उससे इक्वल या तो उससे बड़ा गुण में और शक्ति में, प्रभाव में लड़का मिलना चाहिए। लेकिन ये राजा भगवान का भक्त था, उसने सोचा कि ये सब चीजों के ऊपर एक चीज है, वो है भगवान की भक्ति। मेरी कन्या को इसी जन्म में, जन्म के अंत में, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम की प्राप्ति करना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए धन दौलत, ऐश्वर्य, विद्या, सिद्धि, शक्ति, इसके ऊपर मेरे जमा दामाद के अंदर क्या होना चाहिए? भक्ति होनी चाहिए भगवान की। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही विरोधाभासी कृत्य किया, बहुत उल्टा कृत्य किया। ना राजा का पुत्र देखते हुए, ना कुछ देखते हुए, उन्होंने सीधे कर्दम मुनि को अपने होने वाले दामाद के रूप में चुना। अभी देखिए कर्दम मुनि के क्या क्या योग्यता है। कर्दम मुनि के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, कर्दम मुनि जंगल में रहते थे झोपड़ी के अंदर, और वो इतने भगवान के भक्ति में रत थे कि ना कोई नौकरी करते थे, ना कोई धंधा करते थे, ना कोई उनका धन का उगम था, दिन रात भजन करते भगवान का। लेकिन कर्दम मुनि को देखते हुए स्वयंभू उन्होंने सोचा कि ये मेरे कन्या के लिए अच्छा वर है, क्योंकि ये निश्चित रूप से मेरी कन्या को भगवत धाम ले जाएगा, चाहे वो फकीर होगा लेकिन भगवत धाम जरूर लेके जाएगा। अभी एक और सुंदर गुण देवावती के अंदर था। देवावती ने प्रश्न नहीं किया, अरे पापा क्या जानते हैं आप, जब मैं बालिका थी तो मेरे ऊपर कितने विमान घूमते थे, हम जानते हैं, देवता लोग मेरे तरस रहे मेरे लिए विवाह करने के लिए, और आप ले जा रहे हो मुझे कर्दम मुनि के पास, ये भी कोई बात हुई? मैंने अभी कभी मेरा पैर रखा नहीं जमीन पर, नंगे पैर चली नहीं कभी भूमि पर पांव रख के मैं, और मैं आप जंगल भेज रहे हो, मैं ये कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। मेरे लिए कोई देवता राजकुमार या तो पृथ्वी का राजकुमार ढूंढ के लेके आइए, मेरे से सुंदर हो, मेरे से अच्छा प्रभावित हो और मेरे लिए योग्य हो। पिता ने जो कहा पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। और पिताजी लड़के को क्या कहते हैं ना, वो मांगने हड़ने करता, क्या बनता हिंदी में, रिश्ता लेकर जंगल गए, वो वन में गए, वन में हमारा जमाई वन में बैठा है, तो वन में पहुंचे, महाराज जी हमारी उपवर सुंदर कन्या को आपके पास ले आए, आप विवाह के लिए हम विनती करते हैं आपको। तो कर्दम मुनि ने स्वीकार किया उसको, और वहीं पर वहीं विवाह हो गया उनका। ऐसा नहीं कि भाई शहर में बड़ा माहौल में बहुत ऐश्वर्य के साथ सभी लाखों करोड़ों लोगों के साथ में, जैसे रुक्मिणी के विवाह में कैसे करोड़ों लोग आए थे। कुछ नहीं, जंगल के उधर के तरफ रिश्ता हो गया, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी कन्या कन्यादान हो गया, और वहीं छोड़ के आए उसको। ऐसा नहीं भाई मेरी कन्या है तो ये लो 100 दासियां भी ले लो, थोड़ा सा दो चार झोपड़ी बांध के अनाज भर दो इसके अंदर, है ना, मतलब भी मेरी लड़की के लायक कुछ होना चाहिए ना यहाँ पर, कुछ नहीं। लड़की को अपने दामाद के हवाले किया और घर चले आए। लड़के ने भी सवाल नहीं किया, पापा कैसे होगा मेरा यहाँ पर, क्या करूँगी मैं यहाँ पर, कुछ नहीं। उसने तुरंत अपने पति के हिसाब से अपनी चेतना को चेंज कर दिया। अगर कोई आजकल लड़की होती तो बोलती, अरे कुछ काम तो करो, दिन भर बैठे रहते हो, रोटी कौन कमाएगा, हाँ पिता के घर से इसलिए मारो आई थी, चलो जाओ यहाँ पर कुछ आठ घंटा काम करो, बाद में भजन करो बैठ के, यहाँ पर भोजन के लिए अन्न नहीं है, क्या कर क्या रहे हो तुम, मेरे को साड़ी चाहिए, मेरे को कपड़ा चाहिए, मेरे को बाल में शैम्पू चाहिए, मेरे को तेल चाहिए, कौन ला के देगा, मेरे को सब आदत नहीं यहाँ पर रहने की, सब कुछ मैं तो मेरे पिताजी के घर में पता है क्या क्या फैसिलिटी मेरे पास थी, कभी कुछ ग्लास नहीं उठाया हाथ में मैंने, तो पैर कदम जमीन पर रखा नहीं, आप जानते नहीं हो मैं कहाँ से आई हूँ, किसकी बेटी हूँ। ऐसा कॉमन कलयुग का वार्तालाप वो झोपड़ी में नहीं हुआ, सोचो आप जरा इसके बारे में, बहुत सोचने की बात है। उसने तुरंत अपने पति के स्थिति के अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लिया, चेंज कर लिया उसने। जैसे ही प्रभु रामचंद्र का वनवास हुआ तो विदेही कुमारी राजकुमारी जनक नंदिनी सीता ने तुरंत वलकल पहन लिए। ये नहीं कहा क्या क्या सोचा था और क्या हुआ, सोचा था क्या क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा नहीं गाना गया उसने। उसने कहा जनक मैं जब भी इन्होंने धनुष उठाया था तुझे लगा था वाह क्या बात है, मैं अयोध्या में जाकर राजकुमारी बनूंगी, फिर उसके बाद में राजपत्नी बनूंगी, राजमाता बनूंगी, ऐसा हमारा भविष्य आगे मुझे दिखाई पड़ रहा है, कितनी भाग्य की बात है। और राजमाता दूर रही तो युवराज पत्नी भी नहीं बन सकी भी मैं, युवराज पत्नी बनना भी नसीब नहीं है, और ये वलकल नसीब में आ गया मेरे, मेरा किस्मत ही फूट गया, ऐसे नहीं बोला उसने। तुरंत दो क्षण के अंदर राजवस्त्र उतार कर वलकल पहन लिए, बिना किसी गहना, बिना किसी श्रृंगार, बिना किसी दासी, बिना किसी रथ चले गए। ये हमारी संस्कृति है, इसमें कोई औरत को नीचे मानने का कोई काम नहीं है कि भाई औरतों को तो ऐसे ही करना चाहिए, क्या बड़ी बात है उनमें, औरतों का तो स्थिति ऐसा होता है, उनकी योग्यता ही ऐसी होती है, उनको तो चुपचाप सब करना चाहिए, ऐसा भाव नहीं है इसके अंदर, ऐसा भाव बिल्कुल भी नहीं है। ये पुरुष प्रधान संस्कृति का वो डोमिनेंस प्रवृत्ति नहीं है इसके अंदर। खैर ध्रुव ये कर्दम मुनि इतने महान मुनि थे, ऐसा नहीं कि भाई नई नई विवाह हुआ है, इतनी सुंदर युवती जिसके पीछे देवता लोग पड़े थे वो मेरी झोपड़ी में आ गई है, चलो कुछ दिन अपना विवाह का आनंद ले लेते हैं, फिर भजन करना ही है जिंदगी भर, ऐसा नहीं है, तुरंत भजन में बैठ गए। और पता है कितने साल तक उन्होंने तपस्या किया, और वो तो दुनिया में थे ही नहीं, वो खाली शरीर था उनका, दिन रात ऐसे तुरिया अवस्था में वो एकाग्र मग्न हुआ करते थे, ही इज नॉट अटैच टू एनीथिंग, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, फुल एकदम एब्सॉर्ब्ड, चौथी चुत्ती इतना की अवस्था में थे वो, शरीर से अलग होकर पूरे आत्मा के सर पे भगवान में मग्न होकर रहते थे, और ये दिन रात उनकी सेवा करती थी, उनको क्या चाहिए, फल चाहिए, कुछ गंदमूल चाहिए, कुछ ये चाहिए, पूजा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए दिन रात लगी रहती थी, और कभी भी अपने बालों को संवारने में, अपने खूबसूरती को संवारने में, अपने आप को खाने पीने के लिए या विश्राम के लिए कभी कुछ समय नहीं मिला उसको, फुल ऑस्टेरिटी, तपस्या कड़क एकदम। तो कई साल की तपस्या के बाद में पिता की पति की सेवा में रत होने के कारण उसका सौंदर्य पूरा नष्ट हो गया, पूरी दुबली हो गई वो, उसके बाल जो थे सुंदर से घुंघराले बाल वो जटा जैसे बन गए, नो टाइम टू टेक केयर ऑफ हेयर, विश्राम करने का समय नहीं, भोजन करने का समय नहीं, ठीक से कुछ पढ़ूं आराम करूं कुछ भी नहीं, फिर भी दिन रात अपने पति भगवान के भक्त है ये समझकर उन्होंने दिन रात भगवान का तो पति का सेवा किया। और बहुत साल के बाद में वो करदम मुनि एकदम प्रसन्न हो गया अपने भजन से, मतलब बहुत प्रसन्न हो गए, तब उन्हें पहली बार देखा आंख खोलकर कि कौन मेरी सेवा कर रहा है। मुझे अगर सही याद है, अगर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उसने उनको पूछा आप कौन हो, वो भी भूल गए थे कि आई एम मैरिड विद दिस गर्ल, तब उन्होंने कहा मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, स्वयं भू मनु की लड़की हूँ मैं, तो बड़े प्रसन्न हो गए वो, बहुत प्रसन्न हो गए, मतलब क्या चाहते हो, तो उन्हें कहा कि मैं संतान चाहती हूँ, पुत्र चाहती हूँ। अभी देखो कर्दम मुनि जैसे आप सोचते हैं विरक्त है, कोई उनको क्या पड़ी है, तुरंत उसने अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए एक आकाश में महल बना दिया। हमको क्या लग रहा है, अरे फकीर है, इसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे सिद्धियां थी उनके पास में, केवल इच्छा से उन्होंने आकाश में एक लोक जैसा महल बना दिया। उसके अंदर कई कमरे थे, उसके अंदर फव्वारे थे, उसके अंदर तालाब थे, उसके अंदर कितने बड़े बड़े महल, रस्ते, बगीचे, उपवन, सब कुछ था उसके अंदर। हजारों दासियां थी, ऐश्वर्य संपन्न था, पूरा सोने चांदी गहने या बर्तन सब भरे हुए थे भंडार उसके अंदर। उन्होंने भी योग से अपने शरीर को पूरा जवान बना दिया, अट्रैक्टिव बना दिया। कर्दम मुनि ने अपने पत्नी को स्पर्श करके पूरा उसको यौवन रूप में वापस कर दिया, पूरा जो खो गया था उसका, बाल जटा हो गए थे, शरीर में जाली पड़ गई थी, क्या क्या हो गया था, उस पूरा एकदम यौवन कर दिया, पूरा कायाकल्प कर दिया उनका पूरा। और फिर उस हवाई महल में उन्होंने वैवाहिक जीवन का आनंद लिया, तो एक संबंध में 9 कन्याओं को जन्म दिया उन्होंने। इसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। एक संपर्क हुआ उनका और 9 देवियों को जन्म दिया, उसमें से एक अनसुया थी, एक अरुंधति, वशिष्ठ मुनि की पत्नी। ऐसे श्रेष्ठ देवताओं को उन्होंने जन्म दिया, देवी जैसे स्त्रियों को, लड़कियों को। 9 कन्याओं को जन्म देने के बाद में 9 बड़े बड़े ऋषियों के साथ में उनका विवाह कर दिया उन्होंने। और फिर एक बार संबंध हुआ, फिर किसका जन्म हुआ, भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। इसमें समझने वाली बात ऐसी है कि जैसी चेतना पत्नी और पति की संबंध के समय होती है, वैसे ही संतान उस गर्भ में प्रवेश करती है। ऐसा नहीं कि उस समय हम पैसे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपका जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, आपको पैसा भी चाहिए, आपको फेम भी चाहिए, यश भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए, थोड़ा आनंद भी लेना है शरीर का, जो भी आपका कलेक्टिव भाव है, उसी प्रकार की आत्मा आपके गर्भ में उस समय आकर्षित होगी और प्रवेश करेगी और वहां स्थित हो जाएगी आपके बालक के रूप में, चाहे कन्या हो या पुरुष लड़का हो। तो इन दोनों की चेतना ऐसी स्थिति में थी कि स्वयं भगवान आए उनके पेट में। कैसी उच्च चेतना होगी, देखो, अब नंद महाराज, यशोदा माई, वसुदेव, देवकी, कौशल्या, दशरथ महाराज, क्या चेतना होगी उनकी, क्या किया होगा उन्होंने अपने पिछले जन्मों के अंदर, कि स्वयं भगवान ने तय किया कि मैं जाऊंगा उनके गर्भ में अभी। हाँ, कश्यप मुनि और अदिति के गर्भ में वामन देव आए। हमें सबको गृहस्थों के सोचना है कि हम सब लोग अपनी चेतना को परिवर्तित करके ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को अपने पुत्र के रूप में अपने गर्भ में आकर्षित कर सकते हैं। ये साइंस है। इसलिए हमारे संप्रदाय में विवाह होने के बाद में अगर पुत्र प्राप्ति करना है तो 50 माला पहले जप करते हैं, दिन भर भगवान का नाम का जप और भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, फिर शाम को शुभ स्नात होकर गर्भधारणा के लिए अनुकूल भोजन करते हैं, यानी कि दूध और मेवा और घी ग्रहण करते हैं, फिर शुचिर्भूत होकर भगवान का ध्यान करते हुए एकत्र होते हैं और ऐसे दिव्य आत्मा को अपने गर्भ में आकर्षित कर लेते हैं। That is the life of Krishna consciousness. तो जैसे ही कपिल देव का जन्म हुआ, तुरंत उन्होंने हवाई महल को त्याग कर दिया। अभी आप सोचिए, आप अनुरूप के जन्म में रहते हो, हाँ, अचानक हस्बैंड का प्रमोशन हो गया, हाँ, अचानक 4 कमरे वाले फ्लैट में गए, अचानक मोटरसाइकिल की जगह पर मर्सिडीज गाड़ी आ गई, हाँ, गांव में 10-50 एकड़ जमीन भी हो गई आपकी, और फिर 10 साल के बाद में आपको बोलेंगे आपको वापस एक 1 बेडरूम में आने का आके रहना है अभी इसके आगे, तो कितना तकलीफ होगा आपको, क्योंकि वो जो आदत आपकी बन गई, 4 बेडरूम, मर्सिडीज, जमींदारी, ये पैसा वैसा, अभी आपको बोलेंगे 1 रूम के चंद में रहना है, इतना मुश्किल होगा। मेरी पत्नी अभी अपनी मम्मी के पास गई थी कुछ दिन पहले, पुरानी बिल्डिंग में हम लोग जा रहे थे, तो मुझे घर पर आके बोली, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि 25 साल पहले मैं वहाँ पर रहती थी बिल्डिंग में, चौल में, तो लैट्रिन बाहर हुआ करता था और एक रूम का घर था, कैसे रही होगी मैं अभी, मुझे इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि मैं वहाँ रहूँगी कैसे। उसके सामने वाली बिल्डिंग में रहता था, वो हमारा भी चौल था, बाहर वाला टॉयलेट था छोटी, 10x12 का घर था हमारा, उसमें हम लोग 10 लोग रहते थे, 10 लोग, दादी, माता पिता और हम 7 बच्चे, सब लोग भीमकाय शरीर के थे ऐसे एक एक, हम उसका एक छोटा सैंपल है। तो 25 साल तक वहां रहे, MBBS होने तक। आज अगर जाते हैं कहीं वहां पर ना, तो इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं कैसे रहूंगा पर, हाउ कैन आई स्टे हियर, क्योंकि हम जब भी प्रोग्रेस करते हैं ना तो हम उससे अटैच हो जाते हैं उस स्थिति से, फिर उससे और ऊपर जा सकते हैं लेकिन नीचे नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल है। तो ये हवाई महल का आनंद, इतनी उपवन है उसके अंदर, फव्वारे, बगीचा, तालाब, इतनी दासियां, इतना सुंदर शरीर, इतना भोग, ये सब होने के बाद में जैसे ही कोई शाम को कपड़े उतारता ना, गंदे कपड़े और कुछ लुंगी पहन लेता है, वैसे ही महाराज ने सब कुछ त्याग दिया, फिर तपस्या में चले गए जंगल में, और देवावती ने इस बालक को बड़ा किया, और 5 वर्ष की आयु में, भगवान तो भगवान ही होते हैं, उधर 1 साल के होंगे या 1 दिन के होंगे, हाँ 6 महीने की उम्र पे तो पुतना को मार दिया उन्होंने, 1 साल की उम्र तृणावर्त को मार दिया, तो भगवान ही है वो, तो छोटा होने से क्या होता है। 5 साल की उम्र में जब कपिल देव आ गए तो देवाहुति ने उनको अपना गुरु मान लिया, नीचे बैठ गई वो, पुत्र को आसन दिया और पुत्र से प्रश्न किया जीवन के लक्ष्य के बारे में, और पुत्र ने पूरा सांख्य योग सुनाया अपनी माता को गुरु बनकर। कितनी नम्रता की जरूरत है, जिसको छोटे से बड़ा किया, स्तनपान कराया, जरूर टट्टी पेशाब भी साफ किया होगा ना, स्नान वान भी किया होगा, सब कुछ किया होगा जो एक माता करना करती है अपने बालक के लिए। जो तोतले तोतले बोल बोलता हुआ बड़ा हो गया, जिसको बोलने को सिखाया, हाथ पर करके चलने को सिखाया, सब कुछ सिखाया, तब हम लोग क्या बोलते हैं, तू मुझे सिखाएगा, हाँ इतना सा तो इतना सा था, हाँ मेरे गोद में आके रोता था, आज तू मुझे सिखाएगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, बात तो सही कह रहा हो लेकिन तू सिखाएगा, नो तू नहीं सिखा सकता मुझे, तू तो मेरा बालक, तुझे तो नंगा घूमते हुए मैंने देखा हुआ है। तो उस माँ को कितनी नम्रता की जरूरत है, अगर अपने बेटे को गुरु बनाना है, और बोलने के डायलॉग मारने के लिए नहीं, सही में उसको व्यास आश्रम में बिठाया और नीचे बैठ गई, और उसने एक विद्यार्थी की तरह जैसे गुरु को प्रश्न करता है वैसे प्रश्न किया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए, और पुत्र ने गुरु बनकर माता को पूरा बोध दिया, इसको भागवत में सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग का मतलब क्या है, सांख्य योग का अभी तो बड़ा सांख्य योग बड़ा विषय है, उसको घंटे लगेंगे चर्चा, संक्षेप में सांख्य योग अगर कहना है तो सांख्य योग ये तकनीकी अनुभूति है भक्ति की। भक्ति को अगर आपको तकनीकी रूप में समझना है, जैसे हमारे मेडिकल में एक होता है हैरिसन का बुक, बड़ा विस्तार में उसका वर्णन होता है, और एक होता है चैटर्जी इस रोग के 10 लक्षण क्या है, 1 2 3 4 5, इसके ट्रीटमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, ऐसे पिट पैट शॉर्ट एंड स्वीट ऐसा उसका तकनीकी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, खाली उसका 1 2 3 4 उत्तर होते हैं अच्छी तरह से। उसी तरह से इस भक्ति को अगर तकनीकी रूप में समझना है आपको, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके कितने गुण होते हैं, कितने तत्व होते हैं, कौन से तत्व मिलते हैं, और फिर क्या होता है, फिर महत तत्व क्या होता है, भगवान कौन है, फिर आत्मा कौन है, फिर वो कितने गुण है उसके अंदर, ये सब कुछ समझना है तो सांख्य योग कहते हैं उसको। लेकिन सांख्य योग भक्ति योग ही है, सांख्य योग अलग नहीं है, लेकिन सांख्य योग को समझने का तरीका जरा अलग है ना। अभी आपके घर में मैं आऊंगा, हाय मौसी जी, वांगे भाजी कैसे बनवाता तुम्ही, क्या है वांगे घ्यायची, धुवायची, कापायची, थोड़ा सा मीठ घालायचं, थोडस मारी घालायचं, तळावर पडतायचं, झालं काम। तुम्ही कुठच्याही बाईला विचारा, अरे हळद, मीठ, मिरची, मोरी, हे वे फोडणी करायची, कढी पत्ता झाले भाजी, आपको लिखना है उसको, तो म्हणजे 4 वांगी घ्यायची, ती अशी इतक्या आकाराची असली पाहिजेत, हा मग त्याला ती 4 अशी कापायची की त्याची 4 अर्धी अर्धी कापायची, पूर्ण 4 तुकडे करून टाकायचे नाही, थोडंसं चौगा ठेवायची, अशी 4 अशी उपवून करून टाकायची, मग त्यामध्ये मसाला भरायचा, तो मसाला कसा बनवायचा, मग 10 ग्रॅम ते, 15 ग्रॅम ते, 20 ग्रॅम हे, मग एवढं 1 चमचा, 1 मिरपूड, 1 अर्धा चमचा हळद, 5 ग्रॅम ते, 5 ग्रॅम ते, मग चिमूट 15-20 ml तेल, मग ते थोडंसं गरम करायचं, मग त्यात पहिली राई टाकायची, मग त्यामध्ये 5 ग्रॅम हे टाकायचं, मग लास्टला कढीपत्ता टाकायचा, असं पूर्ण ग्रॅम सकट लिहिणार तुम्ही, ते ग्रॅम सकट लिहून पुस्तकात छापणं म्हणजे सांख्य योग, आणि तोंडी असं म्हणणार की असं असं करून तसं टाकून द्यायचं, हो झाली भाजा, दॅट इज सिम्पल अंडरस्टँडिंग, परंतु अगर करायचं असेल ना सगळं ते मोजमाप आवश्यक असतं। सांख्यवेग असा आहे, तर संक्षेप सांख्यवेग म्हणजे कसं आहे की हे शरीर कसं बनलेलं आहे, ते म्हणतात की 24 तत्व आहेत। आता माझ्याकडे पुस्तक बसलेलं नाही मी, पण एक आठवण ठेवायचा एक सिम्पल तरीका आहे त्यामध्ये, हां 5 आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत, कुची कुची डोळे कान त्वचा नाक आणि जिव्हा, हा पाच. त्यांचे पाच विषय कुठचे कुठचे आहेत? जिव्हा करता स्वाद रुची, डोळ्यांकरता दृश्य रूप, आणि नाकाकरता गंध, आणि कानाकरता शब्द, त्वचेकरता स्पर्श. हे झाले पाच विषय. हा पाच कर्मेंद्रिय कुठची? दोन हात एक कर्मेंद्रिय, दोन पाय दुसरे कर्मेंद्रिय, एक कंठ तिसरं कर्मेंद्रिय, चौथं पोट उदर, पाच चौथं कर्मेंद्रिय आणि जननेंद्रिय पाचवं कर्मेंद्रिय. किती झाले टोटल? पाच पाच पाच, पंधरा झाले. मग तीन गुण, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, किती झाले? अठरा. आणि पंच महाभूत म्हणजे काय? पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि जल. सगळ्यात स्थूल कुठचं? स्थूल ग्रॉस कुठचं? पृथ्वी. त्याच्यानंतर कुठचं? जल. त्याच्यानंतर कुठचं? वायू. त्याच्यानंतर आणखी सूक्ष्म अग्नी. त्याच्यानंतर आणखी सूक्ष्मतम काय? अवकाश. हे पाच महाभूत आणि तीन मन बुद्धी अहंकार. किती झाले टोटल? आठ नाही झाले. हे आठ आणि पहिले पंधरा, तेवीस झाले ना. आता उरलं चोवीसावं तत्व. त्याचं असं आहे की जेव्हा भगवंतांनी निर्माण केलं, सगळं मराठी चालेल सगळ्यांना समजते नाही, भगवान ने पूरा सृष्टि का निर्माण किया ना, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड निर्माण किया जहां पर जन्म मृत्यु नहीं होता है. फिर मटेरियल वर्ल्ड निर्माण किया जहां पर जन्म मृत्यु होता है, और बीच में एक बादल रखा. तो बादल की वजह से जो भगवान के शरीर से तेज निकलता है वो रुक जाता है, मतलब इट्स लाइक अ कर्टन, बादल, और पूरा अंधकार छाता है उसके नीचे. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरा लाइट है, भगवान का शरीर का निकलता हुआ ब्लू लाइट जो है ब्रह्म ज्योति, इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं. वो सब जगह फैला हुआ, उसके अंदर वैकुंठ तैर रहे हैं. एवरीवेयर देयर इज लाइट. हाँ, न शशांक को न पावक, कहा भगवान के धाम के अंदर वैकुंठ के अंदर ना सूर्य की जरूरत है, ना चंद्र की जरूरत है, ना कोई बिजली की जरूरत है. स्वयं प्रकाशित रहता हमेशा भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा से. लेकिन एक बादल भगवान निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बादल का नाम क्या है? महत तत्व. एक बहुत बड़ा बादल होता है जिसके नीचे जितना सृष्टि है वो सब अंधकार में रहती है, और उसको उजाला बनाने के लिए सूरज और चांद की जरूरत होती है, और हम लोग ने बिजली बनाया है उसकी भी जरूरत होती है. तो ये हो गया 24 तत्व. इन 24 तत्वों से मिलकर ये ब्रह्मांड और ये शरीर हमारे बनते हैं. हमारा सब कुछ है कि नहीं? चीज ये पांच कर्मेंद्रिय है, पांच ज्ञानेन्द्रिय है, पांच उसके वस्तुएं हैं, मतलब उसके उनके विषय हैं, फिर मन बुद्धि अहंकार, ये तीन सूक्ष्म शरीर का अंग भी है, सब है. तो ये सांख्य योग है. इसको नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको समझ में आया कि ये मुख से भगवान का नाम लेना है और प्रसाद खाना है, कान से भगवान के नाम सुनना है और भगवान की कथा सुननी है, इतना समझ में आया तो सांख्य योग समझने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन जरूरत भी है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना साइंटिफिक लोगों के, उनको समझता नहीं है ऐसे कैसे है, उनको कुछ ऐसा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे क्वांटम फिजिक्स. वो आपको नहीं समझेगा तो नो प्रॉब्लम. बट आईआईटी के लोग उसी से द्वारा भगवान को समझते हैं, तो वो समझना जरूरी है और समझाना भी उनको जरूरी है उनकी भाषा के अंदर. तो सांख्य योग का वर्णन करने के करते करते भगवान सब अल्टीमेटली भक्ति योग का ही वर्णन देवावती को करते हैं कि कैसे ये सब कुछ जो है ये मिथ्या है. ये सब जो 24 तत्वों से बनाया हुआ जो विश्व है, जो आपका शरीर है, ये सब तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन सब टेम्पररी है, सब समाप्त होने वाला है. दिखता बहुत सुंदर है लेकिन आज है कल नहीं है, आज ऐसा है तो कल वैसा है, आज अच्छा है तो कल बुरा हो जाएगा, आज है तो कल नष्ट हो जाएगा. अल्टीमेटली तो क्या है? अल्टीमेटली तो भगवान ही है. इसके ऊपर 24 तत्वों के ऊपर जो आत्मा है वो इन सबसे श्रेष्ठ है. और उस आत्मा, वो आत्मा कौन है? वो परमात्मा भगवान का अंश है वो. और भगवान कौन है फिर उनका वर्णन करते हैं. और इस जीव आत्मा के और भगवान के बीच में संबंध कैसे पैदा करना है, और ये संबंध पैदा करने के लिए ये 24 तत्वों से बना हुआ विश्व और आपका शरीर कैसे यूजफुल है, ये समझाते हो कि इसका वैल्यू है. ऐसा नहीं कि वैल्यूलेस है, लेकिन है नश्वर. आपको उसका जितना समय दिया उसके अंदर उसको यूज करके इसके द्वारा उनसे संपर्क करना है. तो ये सब जो ज्ञान है वो इस जगह पर कपिल भगवान ने देवावती को बताया है जहां पर आप लोग बैठे हैं, ये इतना पवित्र स्थान है। और कपिल देव के द्वारा देवाहुति ने जब ये पूरा ज्ञान सुना तो वो पूर्णता शुद्ध हो गई, सारे कलमश उसके जितने भी थे वो सब नष्ट हो गए। अभी आप कहेंगे उसके अंदर कलमश कैसे, इतनी तो पवित्र थी वो, लेकिन फिर भी सूक्ष्म स्तर पर जो भी किंतु परंतु थे उसके हृदय के अंदर, वो सब देवाहुति कपिल देव के मुख से जब सांख्य योग का श्रवण किया तो सब नष्ट हो गया और वो शुद्ध हो गई पूरी तरह से, पूरी तरह से मुक्त होने के लिए सिद्ध हो गई हो। और भगवान की स्तुति करती है उसके बाद में, वो जो हमारा अध्याय अभी भक्ति वेदांत में चल रहा है मॉर्निंग प्रेयर्स में, उसके बाद में माता देवाहुति यहाँ पर कपिला नदी बनी हुई है, जहां से आगे जाएंगे तो एक गाय का मुख रहेगा, उसमें से निरंतर पानी बहता रहता है, उसके पीछे कुछ स्रोत नहीं है लेकिन उसमें से निरंतर पानी बहता है, वो कपिला देवी जो देवाहुति कपिला नदी बनी उसका वो स्रोत है। और यहाँ से अंडरग्राउंड होती है और आगे भी वापस प्रकट होती है और फिर आगे जाकर तपोवन में गोदावरी से मिलती है, उसका हम कल दर्शन करेंगे सुबह। और उसके मिलन के स्थल पर भी एक सुंदर लीला हुई है, वो भी आपको कल सुनाएंगे, लेकिन कपिला गोदावरी का संगम नासिक में आपको मिलेगा, इतना सुंदर स्थान है ये। तो देवावती से हम क्या क्या सीख सकते हैं, पिता पति के घर जाने के बाद में मायके का बखान और ऐश्वर्य का वो तुलना नहीं करना चाहिए कि मेरे घर में क्या था और तुम्हारे घर पे क्या है, कभी भी उसने जिक्र भी नहीं किया, उसका मौका ही नहीं था, उसको हस्बैंड थे ही नहीं इस दुनिया में, पूरे आत्मा के सर पर तो उच्च स्थिति में थे, क्या बोलेंगे मेरे में घर में क्या क्या था, लेकिन वो सरेंडर थी पूरी, कंप्लीट समर्पित थी वो। और कभी भी उस इतनी समर्पित इतनी सुंदर होने पर भी कभी गर्व नहीं किया उसने, कभी वाद विवाद नहीं किया, समर्पित होकर पति की सेवा किया, पति के लिए पिता का सम्मान रखते हुए पति का सेवा किया उसने। और पति पिताजी इतने श्रेष्ठ थे और ऐसे कोई विरोधाभासी पति को उन्होंने विवाह कर दिया ना, उसका एकदम कॉन्ट्रास्ट हस्बैंड, कभी कंप्लेंट नहीं किया उसने उसके बारे में, ना कोई विवाद किया ना कोई प्रश्न किया, इतनी श्रद्धा थी। देखो कभी पति मतलब पिताजी एक श्रेष्ठ भक्त हैं, माताजी भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, कन्या हुई वो भी श्रेष्ठ भक्त है भगवान की, तो तीनों को पता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है और हम कौन है और क्या कर रहे हैं। तो पिता के बाद में पूरी श्रद्धा है, पिता क्या करेंगे मेरे लिए, अच्छा ही करेंगे, इतनी पूरी श्रद्धा है तो कोई प्रश्न ही उठता नहीं कि वाय वाय, ऐसा प्रश्न उठने का सवाल कब आता है, जब श्रद्धा नहीं होती है। पिताजी जब उदाहरणीय भक्त नहीं होते, एग्जाम्पलरी डिवोटी नहीं होते, तो फिर कन्या भी प्रश्न करेगी, ऐसा क्यों वैसा क्यों ये क्यों नहीं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, कंप्लीटली परफेक्ट सिचुएशन। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा तीसरे स्कंद में बना हुआ है, ये पूरी लीला जो है वो यहाँ पर हुई थी। दूसरी लीला यहाँ पर ऐसी है कि आप जानते हैं ना, जब भी प्रभु रामचंद्र सीता को खो बैठे, रावण ने हरण कर लिया उसका, तो वो ऐसे भटक रहे थे, भटक रहे श्री राम, भटक रहे श्री राम, लीला करत श्री राम, लीला करत श्री राम, ऐसे रो रहे हैं जैसे मानो कोई पत्नी में आसक्त जब पुरुष होता है तो कैसे होता है, पागल की तरह। वो वन्य देवताओं को पूछ रहे, ठीक है वन्य देवताओं ग्राम्य देवताओं दिक्पालो आप कहाँ पर हो, आपने मेरे सीता को देखा है क्या, वो तब तक ठीक है, और पेड़ को पूछ रहे हैं, वेलियों को पूछ रहे हैं, डालियों को पूछ रहे हैं, फूलों को पूछ रहे हैं, तितलियों को पूछ रहे हैं, पंछियों को पूछ रहे हैं, कहीं तुमने मेरे मृगनयनी सीता को देखा है, हे वृक्षों हे डालियों कहीं तुमने मेरी विदेह कुमारी को देखा है। वो गले लगा रहे हैं, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, आपको क्या लगेगा कैसे हस्बैंड है, देखो इतने बड़े राजा के पुत्र हैं ये, इतने सर्वगुण संपन्न है, लेकिन देखो कैसे रो रहे हैं, इससे अच्छा काम आम शूद्र आदमी भी इससे अच्छा, इतना तो साड़ी बेचकर होता नहीं है पत्नी के लिए। वो क्या दिखा रहे हैं कि जब कोई जरूरत से ज्यादा पत्नी से आसक्त होता है तो पत्नी खोने पर क्या अवस्था होती है, वो दिखा रहे हैं अपने को। खुद उसके लिए परेशान नहीं है वो। दुनिया को दिखा रहे हैं कि पारिवारिक जीवन, पारिवारिक आसक्ति कैसे खतरनाक होती है, कि जब वो छूट जाती है हमारे हाथ से तो फिर क्या स्थिति होती है हमारी, ये दिखा रहे हैं। अच्छा, ये सब हो रहा है जंगल में इसी जगह पर, हाँ पेलों को सबको पूछ रहे हैं, इसलिए हम पेड़ के नीचे बैठते हैं क्योंकि इन्हीं पेड़ों को उन्होंने पूछा है, इन्हीं के पूर्वजों को पूछा होगा कि कहीं तुमने हमारी मृगनयनी सीता जी को देखा है। तो ऊपर से विमान में बैठकर शिव जी और पार्वती जा रहे हैं, वो तो जाते रहते हैं अपना वो विहार करते रहते हैं, ओवर सीइंग द वर्ल्ड। तो पार्वती देखते हैं, देखो 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 तुम्हारे आराध्य भगवान, देखो ऐसे रो रहे हैं, ये भी क्या रोने की तरीका है। तो शिव जी कहते, अरे नहीं देवी, वो तो लीला कर रहे हैं, वो तो पृथ्वी पर उनका अवतार हुआ है, तो उसमें सीता जी का हरण हुआ है, तो वो लीला कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। नहीं नहीं नहीं, ये आपके आराध्य भगवान, ये तुम्हारे आराध्य भगवान, तुम तो इतने विरक्त हो और तुम इतने संन्यास्त व्रत में रहते हो और तुम्हारे भगवान इतने आराध्य भगवान इतने आसक्त, ये कैसे हो सकता है। फिर बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो जिद करती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो जाके उनको परीक्षा करूंगी। तो मत कर परीक्षा, आप नहीं जानते हमारे भगवान दिव्य है, त्रिगुणा के त्रिगुण के परे हैं, वो ट्रांसेंडेंटल हैं। फिर भी वो कहती है, मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ, जाके उनकी परीक्षा करती हूँ। तो ये देखो, व्याकुल होकर, विवल होकर, भाव विभोर होकर, अश्रुधाराएं बह रही है इनकी, और लग रहा है कि पूरे मतलब अपने इंद्रियों पर काबू पूरा खो चुके हैं, ऐसे एकदम पूरी बुरी अवस्था में एकदम। और ये बीच में सीता बनकर खड़ी हो जाती है, पूरा वर्ष वलकल वलकल पहन के उसी भेष में, बोलते स्वामी मैं तो यहाँ पर हूँ और आप विलाप कर रहे हैं। तुरंत प्रभु रामचंद्र साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं, हे पार्वती देवी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तब वो समझ जाती है कि ये सब लीला है, क्योंकि वो सीता के रूप में खड़ी है, वो भाग के नहीं, सीते अरे सीते, मैं तुम्हें प्राप्त कर लिया, अरे तुम कहां थी इतने देर, ऐसा नहीं। तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, हे जगन माते, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। सो आश्रु अश्रु बंद। तो फिर शिवजी उतर आए और ये बहाने प्रभु रामचंद्र और शिव जी का यहाँ पर मिलाप हुआ है, मिलन हुआ है, भक्त को भगवान के दर्शन हो गए। पत्नी के मोह के वजह से, पत्नी के कसौटी करने के, परीक्षा लेने के मोह के वजह से पति को भगवान के दर्शन हो गए, पति भी धन्य हो गए। वाह, अच्छी अच्छी बात है, लीला के बीच में भगवान की मुलाकात हो गई। फिर भगवान के चरणों में दंडवत करके, उनकी कृपा याचना करके, पार्वती जी फिर पति के साथ में विमान में बैठकर फिर यहाँ से रवाना हो गई है। ये भी लीला यहाँ पर हुई है। फिर आगे जाकर रामायण में हम देखते हैं ना कि लक्ष्मण जी को इंद्रजीत की शक्ति लगती है और वो शक्ति की वजह से लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं और कुछ ही समय, कुछ ही घंटों का समय होता है, उसके बाद में वो मरने वाले होते हैं। और हिमालय से संजीवनी बूटी लाने का काम हनुमान जी को हम देते हैं, राम जी वो जो वैद्य को उठा के लेके आते ना, आप जानते ना राक्षस का वैद्य था वो, उसको किडनैप कर लेते हैं ओवर नाइट, उसको उसके घर के साथ उठाकर, उसका पूरा जो पहाड़ था उसके ऊपर उसका घर था, वो पूरा पहाड़ ही हनुमान जी उठा के लेके आते सीधा। ऐसा किडनैपिंग कभी हुआ है क्या, बोलो आप? आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, आपको पूरा आपका बिल्डिंग के साथ में ही किडनैप किया जा रहा है, आप अपने बिल्डिंग में सो रहे हैं आराम से, सीधे उठाकर रणांगण में लेके आते रात को। बोलते बताओ इसका क्या करना है, बोलते इसको तो संजीवनी लगेगा, वो कुछ घंटे का समय है और सूर्योदय के पहले अगर ये नहीं आता है लौट के, तो सूर्योदय की फर्स्ट किरण के साथ में इसका खत्म हो जाएगा। तो ओवर नाइट जाते हैं वो और संजीवनी लेकर जब आते रहते हैं, बहुत लीला लंबी है उनकी, संजीवनी लाने की, लाने की लीला। जब यहाँ से गुजरते होते हैं तो ये जो पहाड़ है आपके सामने, ये ही पहाड़, ये अभी पश्चिम दिशा में सूर्य है ना, तो ये जगह के पूर्व दिशा में ये पहाड़ है, ये पूर्व दिशा में पहाड़ में काल नेमी नाम का राक्षस रहा करता था। ये रामायण में भी उसका वर्णन आता है पूरा, काल नेमी। तो वो रोकता है उनको यहाँ पर, तो हनुमान जी उसका वध कर देते हैं काल नेमी का, और उसी पर्वत पर एक किला और एक तालाब बना देते हैं उसी के याद में। और उसी जगह पर, पता नहीं है वो जगह तो नहीं है, स्थान तो नहीं, एक कुंड था, उस कुंड में एक गंधर्वी को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया था मगरमच्छ बनने के लिए, तो हनुमान जी अपने स्पर्श से उसका भी उद्धार करते हैं, उसको गंधर्वी का शरीर दोबारा प्राप्त करवाते हैं, फिर संजीवनी का पार्ट लेकर फिर जाते हैं वापस। कहाँ जाते हैं? श्रीलंका, एट द साइट ऑफ द वॉर। फिर सूर्यास्त सूर्योदय के पहले ही पहुंच जाते हैं वहां पर। कितना काम होता है देखो, कितना टेंशन है। इज इट नॉट ट्रू? शक्ति लग गई है और वो भी शाम का समय है, पहले तो पता नहीं क्या करना है। फिर पहला टास्क जो है वो वैद्य को उठा के लेके आने गए। हाँ, हम लोग कैसे बोलते हैं, कुछ भी हो उसको उठा के ले गया, अब भी चाहिए मुझे वो यहाँ पर। ऐसे ही ना, सच अ कंडीशन। तो पहले उसको उठा के लेके आया, उसको पूरा प्रेम से डरा धमका के जो भी कुछ है बोला बता अब नाड़ी पकड़ के क्या करना है। फिर वो बोलता है कि इसको ऐसा ऐसा ही चीज लाना है। और वो किधर है? हिमालय के अंदर। आप किधर हो? श्रीलंका के अंदर। बीच में समुद्र है और बीच में भारत देश पूरा है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक जाना है आपको पूरा। वहां पर पता नहीं है, अभी आप बोलेंगे कपिलधारा जाओ, वो नासिक में है। फिर क्या करेंगे आप? किधर है वो? कौन सी दिशा में? पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कौन से रास्ते में है? किधर राइट मुड़ना है, किधर लेफ्ट मुड़ना है? कितना तकलीफ है। अच्छा, प्यार में पकड़ लिया उसको, तो जैसे ही पकड़ लिया तो क्या हुआ, वो सब जड़ी बूटियां ऐसे अदृश्य हो गई, क्योंकि वो उनको पता नहीं था कि कौन आदमी आया है। पराया आदमी आके वो लेने, संजीवनी को लेने की कोशिश कर रहा है, तो सारी जड़ी बूटियां जो है वो अपने आप को अदृश्य करा लेती है। फिर इनका उत्साह कितना मजबूत रहता है, वो नाराज नहीं होते हैं। बोले अच्छा चलो, तो पूरा पहाड़ी उठा के लेके जाते हैं। फिर वो देख लेगा वो देखा पर कैसा जड़ी बूटी है, वो देख लेगा अपने आप। कितना निश्चय है देखो ना, और कितना डेस्परेट है भगवान के सेवा के लिए हनुमान जी। कोई चीज, जैसे हमने सुबह बताया था आपको कि कोई चीज भक्त को भक्ति करने से रोक नहीं सकती है। कितनी बाधा आएगी, कितने कसौटी आएगी, कितनी विपरीत घटनाएं घटेगी, भक्त हटता नहीं है। वो बोला हटूंगा नहीं, जैसा सेवा करके आ जाऊंगा पूरा। जैसे हमारे रवि ने जगन्नाथपुरी में एकादशी का व्रत करना था, तो जगन्नाथपुरी में एकादशी होता ही नहीं, तो बोलेगा प्रभु जी क्या है एकादशी नहीं होता, यहाँ पर सामान नहीं मिलता है। बोला आपको करना है, महाप्रभु चैतन्य ने किया था, चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में, हम उनके अनुयायी, हमको भी करना है। तो दो दुकान में जाके बोल सकते थे ना, तभी तो नहीं मिल रहा यहाँ पर कुछ, तो हमने कहा हमको करना है। 26 दुकान में गए, घाटी बोलने वाला आदमी बाड़ेश्वर का, उधर उड़िया बोलते हैं लोग, क्या कनेक्शन है उसका अभी हिंदी का, इधर कुछ ना कुछ तो कुछ कनेक्शन है अभी, उड़िया का और मराठी का कनेक्शन क्या है किधर। 26 दुकान में ढूंढ कर सारा सामान लिया और 168 लोगों को एकादशी का 3 बार खाना खिलाया। तो सेवा करने को जिसको करना है ना, उसको कभी भी बाधा रोक नहीं सकती है, उल्टा बाधा आने पर वो और ज्यादा शक्ति आती है उसके अंदर बाधा को नष्ट करने के लिए। तो ऐसे हनुमान जी इतनी बाधाएं आई फिर भी रोके, वो सूर्योदय के पहले पहुंचना है। अरे अभी जा रहा है उठा के आराम से, तो वो बीच में आ गया कॉलोनी में, उसको समाप्त किया। मतलब कितना क्विकली टाइम बाउंड किया होगा ना, ऐसा नहीं कि बेला बरोडली शस्त्र उठा रहे हैं, अस्त्र फेंक रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, चलो अभी बहुत टाइम ही टाइम है, इसको आराम से एकदम क्या होता है ना सागर संगीत, उसको पूरा अच्छी तरह से मारेंगे उसको। ऐसा नहीं है, टाइम नहीं है, इधर फटाफट काम करना है, वो सब करके सूर्योदय के पहले वहां पहुंचना है। बीच में संत कैसा होता है, वो कितना भी बिजी होगा ना, कभी भी पतित जीव का उद्धार करने के लिए रुकता नहीं पीछे। वो देखा गंधर्व भी यहाँ पर मगरमच्छ बन के पड़ी हुई है, उसका भी स्पर्श करके उद्धार कर लिया, इतने बिजी शेड्यूल के अंदर। ऐसा नहीं बोला कि तुम बाद में, अभी तुम मगरमच्छ बनी हो ना, इतने साल से पड़े हो ना, अभी थोड़ा और थोड़ा रुक, मगरमच्छ बनी रहे, मैं बाद में आता हूँ जरा, मैं भी इमरजेंसी में हूँ। ऐसा नहीं है, कर लिया उसका भी उद्धार कर लिया। तो ये भूमि जो है ना, ये हनुमान जी के चरणों से पवित्र हो गई है, उनके चरण स्पर्श से। इसलिए 600 साल पहले शिवाजी महाराज, मतलब 500-600 साल पहले रामदास स्वामी यहाँ पर आए थे और उन्होंने शिवाजी महाराज को यहाँ पर बोध दिया है, उपदेश किया है और समझाया उनको कि ये भूमि जो है हनुमान जी के द्वारा पवित्र हो गई है। प्रभु रामचंद्र, हाँ, सीता देवी, पार्वती देवी और शंकर जी, इनके चरण स्पर्श से भूमि बहुत पवित्र हो गई है। तो हनुमान जी इस लीला की याद में आप हर एक गांव में, आपका जहां जहां साम्राज्य मराठी आप स्थापन करने वाले हो, वहां वहां पर आप हनुमान जी का मंदिर स्थापन करो और बल की उपासना करो, लोगों को शरीर से मजबूत बनाओ। इसलिए शिवाजी के राज्य में बहुत जगह जगह हनुमान जी का मंदिर स्थापन किया गया और आज भी हमारे किधर भी आप जाओ, मुंबई इधर उधर, हनुमान जी का मंदिर तो कोने कोने में मिलेगा आपको। इधर उधर शिव जी का लिंग मिलेगा, हनुमान जी का मंदिर भी मिलेगा। ये उनकी कृपा है रामदास स्वामी जी की। फिर वो हमारे महाराष्ट्र के इतिहास में ज्ञानेश्वर जी महाराज हुए हैं। हाँ, वो कहते हैं कि चतुर्युग जो है अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव और शंकरषण, इसका वो चार अवतार थे। उसमें ज्ञानेश्वर जी को विष्णु जी का अंश अवतार मानते हैं, बाकी निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान और मुक्ताबाई ये बाकी लोग हैं। तो यहाँ पर उनकी बड़ी लंबी कथा है ज्ञानेश्वर महाराज की, वो सिद्ध योग अष्टांग योग और भक्ति का मिश्रण उनके, उसको नाथ संप्रदाय समर्थ संप्रदाय कहते हैं। एनीवेज, तो एक ब्राह्मण का पुत्र मरा हुआ था, तो इस तीर्थ का जल पिलाकर उस मरे हुए ब्राह्मण पुत्र को उन्होंने जीवित कर दिया। कौन सा जल? कपिला तीर्थ का जल। तो कपिल धारा मतलब कपिला नदी की धारा यहाँ पर बह रही है, इसलिए उसको कपिल धारा तीर्थ कहते हैं। और काव नहीं इसलिए कहते हैं क्योंकि काल नेमी को मारा ना यहाँ पर हनुमान जी ने, इसलिए काव नहीं कहते हैं। वो काल नेमी नाम का ही अपभ्रंश है, वो काल नेमी काव नहीं इस तरह से उसका अपभ्रंश है वो, है ना। तो शिवाजी महाराज ने ऐसे कहा है कि अपने साम्राज्य में 12 बैरागी चौकियां बनाई, मतलब वो एक स्टाइल है बोलने का। जैसे आप अगर आप यूपी में जाएंगे तो आप सुनेंगे उन्होंने कहा, कहेंगे कि 12 बैठक बनाई, ऐसे आप सुनेंगे। और कहीं जाएंगे तो आप सुनेंगे कि यहाँ पर 12 पीठ बनाए, पीठ। और वल्लभाचार्य संप्रदाय में क्या कहते हैं? बैठक बोलते हैं, वल्लभाचार्य जी की महाप्रभु जी की बैठक बोलते हैं। यूपी के संप्रदाय में जाएंगे तो फिर वो पीठ पीठासीन पीठ कहते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापन किए, 12 स्थान स्थापन किए जहाँ शिव जी के प्रमुख लिंगों की स्थापना की गई। तो वैसे 12 बैरागी चौकियां मतलब विरक्त, और एक भाषा उसका है उदासीन अखाड़ा कहते हैं उसको, उदासीन अखाड़ा। उदासीन मतलब क्या? दे आर नॉट मोरोज और डिप्रेस्ड। उदासीन मतलब दुनिया से उदास, मतलब दुनियादारी में उनको इंटरेस्ट नहीं है। जब दुनियादारी की बातें होती है तो उदास नजर आते हैं, भगवान के विषय में उत्साहित रहते हैं। ऐसे विरक्त बाबाओं को उदासीन कहते हैं। और उदासीन अखाड़े का मतलब वहाँ कुश्ती नहीं खेलते हैं, उदासीन अखाड़े का मतलब है कि वहाँ पर वो रहते हैं, अपना वैराग्य जो है उसका साधना करते हैं। तो वैसे 12 जो शिवाजी महाराज ने वैराग्य का पीठ स्थापन किया, उसमें से एक कपिल धारा तीर्थ है। और आज भी यहाँ पर विरक्त साधु लोग आके तपस्या करते हैं। महाराष्ट्र के संत जो हैं गजानन महाराज, उन्होंने भी यहाँ पर 12 साल आके तपस्या किया। ये बेसिकली कपिल धारा तीर्थ जो है वे ऐसा रमणीक स्थान है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग, कोई कमर्शियल, कोई दुकान धंधा, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है वो जंगल है, वन है। अब आराम से रहो, भगवान के नाम का भजन करो, संसार से विरक्ति प्राप्त करो, ये इस क्षेत्र का जो है महात्म्य है। बस यही सब लीला है इस स्थान की। यहाँ पर लिखा है कि 11,32,000 पहले ही तीर्थ तैयार हो गया, वो जो गलत है, क्योंकि सत्ययुग कितने साल पहले होगा आज से बताओ? रामायण आज से कितने साल पहले हुआ है? आपको गणित समझाया ना मैंने अभी, लिखो कागज में लिखो, 4,32,000। अभी उसमें 500 साल हो गए हैं, तो इसमें से 500 कलयुग के, उसके पहले वाले कितने? 8,64,000 द्वापर के, और उसके पहले कितने? 12,96,000। गिनो अभी इसको, कितने हो गए टोटल? 500 बताओ, 21,00,000 तो एवरेज हो गए ना। तो आज से 21,00,000 पहले रामायण की घटना हुई थी। और कपिल देव देवावती का जन्म कभी हुआ था? सत्ययुग की बात है। तो उस सत्ययुग कितने साल का था? उसको 4 से गुना आप, 17,28,000 सत्ययुग का समय। तो तभी ये लीला हुई थी, कपिल देव का जन्म हुआ था, देवाहुति स्वयंभू मनु। अरे बाय द वे, ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये। ये 71 मन्वंतर 71 × 43,20,000 ईयर्स, इतना समय का उनका राज्य है। उसमें कई दिव्य युग होते हैं ना, 71 दिव्य युग तो सर्कल होता है ना उसका, 71 बार। तो कौन से दिव्य युग की लीला है कि कौन जानता है? ये पहले 71 वाले पहले में ये लीला हुई थी कि 37th में हुई थी कि 51st में हुई थी, how will you know that? ये तो उनका पूरा कालावधि है, 71 into 43 lakh 20,000 years. और ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं ये, तो कितने लाखों करोड़ों साल पहले लीला हुई यहाँ पर. तो ये स्थान चिरंतन स्थान है वैसे, खाली वो अपने द्वापर में और त्रेता में हम लोग लिंक कर सकते हैं कि भाई ठीक है अभी हमारे कली के 500 साल पहले 400 साल पहले ज्ञानेश्वर महाराज जी आए थे, उसके 600 साल पहले ये आए थे और उसके कुछ साल पहले ये हुआ था, ये अपना गणित है. लेकिन कपिल देव और देवावती का संवाद जो है वो चिरंतन काल, बहुत हमारे लिए तो इटर्निटी हो गया, वो इतने पुराना साल है. इतना रमणीक स्थान है ये. और एक आगे एक तालाब है, वो बहुत सुंदर तालाब है, इसके आगे जाने के बाद रास्ते में दिखता है वो. हमको लगा था कि वही तालाब है जो हनुमान जी ने निर्माण किया था, बहुत संभाल के रखा है उसको उन्होंने. तो अभी हम लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं. ते मी कधी ऐकलं नाही असं कधी. अरुंधती वशिष्ठची बायको, अनसुया अत्रीची बायको, असे सगळे महान महान ऋषींना त्याने दिलेले आहे. त्यांचं नाव आणि पतींचं नाव ते विसरून गेलो, पण ते एका भागवत मध्ये सांगितलं होतं त्यांनी पूर्ण, नऊ कन्या आणि नऊ पती त्याचे कोणते ते. मी तरी नाही ऐकलं, असेल का त्याची माहित नाही का त्याची मला. हा त्यातलं एकच मला माहिती आहे ते म्हणजे अनसुया जी आहे ना ती. चला तुमच्या आय टेल यू, हे बंद करू नका. तिची गोष्ट सांगतो म्हणे अनसुयाची. एकदा काय झालं, पृथ्वी पे सबसे एनीवे स्वर्ग लोक में चर्चा चल रही थी, ब्रह्मा जी की पत्नी, शिव जी की पत्नी और विष्णु की पत्नी. वो अपने आप को पतिव्रता समझती थी, बोला हम ही पतिव्रता है, सब हमसे बढ़कर कौन हो सकता है, ऐसा उनको लग रहा था. तो उनके पतिदेव को ये ध्यान में आया कि ये अपनी पत्नियां सोच रही कि वही श्रेष्ठ पतिव्रता है. तो पतियों ने कहा कि ऐसा नहीं है. तो अरे ऐसा नहीं है, फिर कौन है वो जो हमसे ज्यादा पतिव्रता है. अभी समझो, अभी आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम नॉट मिस यूनिवर्स, देन हु इज द वन, लेट मी सी. और अगर वो है मेरे से कोई सुंदर तो मैं उसको देखना चाहती हूँ कि क्या उसके अंदर उतना ऐसा है जो मेरे में नहीं है. वो ईर्ष्या उत्पन्न होती है ना. तो ये नम्र होकर नहीं पूछ रहे, अच्छा हम नहीं है क्या, कौन है वो, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं. कौन है वो? तो कहते हैं वो पृथ्वी पर एक माता है. पृथ्वी माता है, पृथ्वी की मनुष्य, और वो देवताओं से भी श्रेष्ठ पतिव्रता है. वह है तो हम तो ऐसा नहीं मानते हैं, हम तो परीक्षा करेंगे उसकी, कसौटी करेंगे. आप लोग जाओ उसके पास, साधु बनकर जाओ और उसको बोलो कि हम भिक्षा लेंगे आपसे, और भिक्षा केवल आप नग्न होकर ही हमको देंगे तो ही ले सकते हैं. फिर देखते हैं उसका पतिव्रत धर्म कहाँ जाता है. तो ये गए ऋषि बनकर, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, अत्रि मुनि अपनी कुटी में रह रहे हैं, पति पत्नी उनकी सेवा कर रही है, चरण दबा रही है वो. भवती भिक्षा देही, थोड़ा रुको रुको, थोड़ा रुकना पड़ेगा, मैं पति की सेवा कर रही हूँ, पूरी करके आऊंगी. अच्छा साधु जी हैं, हम विरक्त हैं, आप तो गृहस्थ लोग, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको आना पड़ेगा. नहीं रुको आप. तो कुछ देर बाद में आती है और कहते हमें भिक्षा दो. तो यहाँ ले लो, हमारी एक शर्त है कि आप सारे वस्त्र उतार कर हमको भिक्षा ग्रहण कराएंगी तो ही हम ले सकते हैं, ऐसा हमारा प्रण है. तो समझ गई है कि इसमें कुछ दाल में काला है. एकदम शांति से बिल्कुल विचलित ना होते हुए अंदर गई और अपने पति का जो कमंडल था, जिसके अंदर सुबह की पूजा में जो अभिमंत्रित कल के पवित्र जल बना के रखा था वो लेकर आई. उसका जल लिया, तीनों पर छिड़क दिया, तो तीनों स्वयं नग्न बालक बने. सबसे पहले रेंगते हुए बालक बने. फिर बोले बैठो अभी, फिर वस्त्र उतार लिया और उनको भोजन कराया. अभी वो नन्हे बालकों के सामने क्या होता है, कुछ कोई भंग वंग कुछ होता नहीं है पतिव्रत धर्म का, है ना. अभी कई बार तो माता और बालक छोटा छोटा बोल तो होता है, दोनों साथ में स्नान करते हैं, छोटा सा बालक गोद में लेके माता, बिकॉज बालक जो है माता को छोड़ता ही नहीं है, तो माता उसको लेके बाथरूम जाती है और खुद दोनों स्नान करते हैं, उसमें किधर पतिव्रत भंग क्या होता है उसके अंदर, कुछ नहीं है. तो तीनों बालकों को भोजन कराती है, अपना उनका प्राण भी पूरा, इनका भी प्राण पूरा. वो बालक इतने आसक्त हो जाते हैं उनसे, तो उधर ही रह जाते हो बालक के रूप में, गेंद खेल रहे हैं, उनका स्तनपान कर रहे हैं, उनको साथ नहला रहे हैं, उनको क्या क्या सब कुछ बालक की लीला सब चल रही है। और अत्रि मुनि के आश्रम में अनसुया के घर पे ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन के रेंग रहे हैं। इधर अभी अपना जब बच्चों को एग्जाम में भेजते हैं जो आप लोग, तो आपको मालूम है ना 10 से 1 का पेपर होता है, 1 पेपर देगा 2 बजे तक घर पहुंच जाएगा, है ना, एग्जाम 2 बजे तक, 3 बजे तक आना ही चाहिए घर पे उसको। अरे 3 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए, रात के 11 बज गए, बोले किधर गया ये बच्चा, फिर आप जाएंगे ढूंढने के लिए, स्कूल में जाएंगे, फिर पुलिस चौकी में जाएंगे, ढूंढते रहेंगे किधर गया बच्चा, 2 बजे से एग्जाम लेके चला गया है। तो तीनों माताएं ऊपर परेशान हो गए, अरे हमारे पति कहाँ गए, गए परीक्षा करने के लिए और गायब हो गए, आए नहीं वापस, तो उनको पता था कहाँ गए। तो फिर वो तीनों आती है उनके आश्रम में और पूछते हैं कि हमारे पतिदेव यहाँ पर है क्या, तो बोले देखो वो खेल रहे हैं वहां पर, उधर खेल रहे हैं। तो वो ऐसे नग्न बालक वहां पर खेल रहे हैं, तो नहीं हमको वापस दे दो हमारे पतियों को। तो दोबारा अपना पति का कमंडल लेके आती है, उन पर जल छिड़कती है, तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। बोला अभी जाओ, तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, आप शांति से बैठो, कुछ नहीं करेगी वो, कुछ नहीं करेगी, प्रेम से देखो उसको, निहारो, माता है वो अपनी गौ माता। तो वो इतने आसक्त हो गए थे माता को, कहते हम जाएंगे जरूर, लेकिन हमको एक वादा ऐसा करना है, कर लेना है आपसे, कि हम आपका दोबारा पुत्र बनना चाहते हैं। कहते ठीक है। तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो तीनों एकत्र हो गए और दत्तात्रेय के रूप में अत्रि और अनसुया के पुत्र के रूप में जन्म लिया उन्होंने। दत्तात्रेय भी बहुत बड़े भगवान का अवतार है, बहुत सुंदर अवतार, और उन्होंने 24 गुरु किए हैं, उनका भागवत में वर्णन आता है। फिर एक अंश जो है शिव जी का, वो दुर्वासा मुनि बने हैं, वो भी अत्रि मुनि के पुत्र हैं। अभी एक रहस्यमय बात आपको बताता हूँ। हाँ, वो जब भी पुत्र देने का होने का वरदान दिया ना कि हाँ आप पुत्र बन सकते हो, आ गए गौरांग, आ गया, आ जाओ, रोचक कहानी आपको बरसाने ले जा रहा हूं मैं 2 मिनट के अंदर, आप इसलिए आपको सुनना है उसको। तो वरदान तो दे दिया कि आप पुत्र बन जाएंगे, और फिर वो दत्तात्रेय बन गए पुत्र के रूप में। लेकिन जब जा रहे थे तो अनसुया जी ने कहा कि आपने हमारा अपराध किया है, हमारे सतीत्व का परीक्षा करने का प्रयास किया आपने, टेस्ट लिया हमारा आपने, हम नाराज है आपसे बहुत, इसलिए हम आपको शाप देते कि आप पत्थर बन जाएंगे, तीनों पत्थर बन जाएंगे आप। पत्थर बनने का मतलब जानते हो आप, निश्चेतन बनना, नो कॉन्शियसनेस, पत्थर मतलब नो मूवमेंट, नो कॉन्शियसनेस, नो ग्रोथ, नथिंग, लाइफ इज देयर इनसाइड बट नो कॉन्शियसनेस। फिर कुत्ता बिल्ली पंछी आपके ऊपर टट्टी पेशाब करेंगे, सब चलेंगे आपके ऊपर, ऐसे पत्थर बना दिया। फिर ऐसे कहा गया है कि वो तीनों पत्थर बन गए और तीनों पहाड़ों को प्रभु रामचंद्र ने त्रेता युग में अपने हाथ से ब्रज में स्थापन किया है, अपने हाथ से ब्रज में स्थापन किया है। ब्रह्मा जी को स्थापन किया बरसाने में, शिव जी को स्थापन किया नंदगांव में, और विष्णु को स्थापन किया गिरिराज गोवर्धन के रूप में। तो यह है वो अनसुया देवी, कितनी शक्तिशाली औरत होगी वो, सोचो आप, तीन महादेवों को, महान देवों को पत्थर बना दिया उसने। पहले नंगे बालक बना दिया, फिर पत्थर बना दिया। ये होता है सतीत्व की शक्ति, पतिव्रत धर्म का शक्ति कितना पावरफुल होता है। शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई भक्त भी नहीं है समझो, और पति भी भक्त नहीं है, लेकिन पत्नी केवल पतिव्रता है, पतिव्रत जो है वो इतना पावरफुल है समझो, तो केवल पतिव्रत के प्रभाव से वो सीधे पृथ्वी लोक से मनुष्य जन्म से लेकर ब्रह्मा लोक में जन्म ले सकती है स्ट्रेट। और पुरुषों के लिए भी ये नियम है, अगर वो भगवान के भक्त नहीं लेकिन वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, पूर्ण अखंड ब्रह्मचारी है उसका, तो केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके वो ब्रह्मा लोक तक प्रवेश कर सकता है, लेकिन केवल ब्रह्मचर्य भगवान की मिलाप नहीं कर सकता है, केवल पतिव्रत धर्म भगवान को मिलाप नहीं कर सकता है। ब्रह्मा लोक का जन्म कोई अंतिम लक्ष्य जीवन का नहीं है। जब ये पतिव्रत्य स्त्रियों का और पुरुषों का ब्रह्मचर्य जब भक्ति के साथ में मिल जाता है तो फिर वो गौलोक पहुंचाता है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य और पतिव्रत्य दोनों भौतिक अचीवमेंट है, स्पिरिचुअल अचीवमेंट नहीं है। जब उसको भगवान का एक जोड़ देते हैं तो पतिव्रत्य और ब्रह्मचर्य दोनों वैल्यूएबल बन जाते हैं, कीमती बन जाते हैं। हर एक चीज, आपका धन दौलत, आपकी विद्या, आपका बल, आपका सौंदर्य, आपकी सारी शक्तियां जीरो की तरह होती है, लेकिन जब उसके सामने एक कृष्ण का हम जोड़ लेते हैं तो सारे जीरोस को वैल्यू आ जाती है। एक जीरो लगाएंगे 10 हो जाएंगे, दूसरा लगाएंगे जीरो तो 100 हो जाएंगे, थर्ड लगाएंगे तो 1000 हो जाएंगे, और दो लगाएंगे तो 1,00,000 हो जाएंगे, और सब जीरो को ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना है, जीरो। लेकिन एक सामने रखेंगे उसके तो हर जीरो की वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे हमारे जीवन में अगर कृष्ण भगवान की भक्ति का एक है तो हमारे सारे गुण, सारा ऐश्वर्य, सारी विद्या, सारी कला सब महत्वपूर्ण और सब अर्थपूर्ण हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन स्थानों पर आकर हमें ये अनुभूति होती है कि हम कुछ भी नहीं हैं। समझते हैं हम लोग अपने आप को कुछ कुछ समझते हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इतने महान भक्तों के सामने हम क्या हैं, देवाहुति, कर्दम मुनि, स्वयं भुव मनु, हाँ चक्षुषा मनु, शिवजी महाराज, पार्वती देवी, जटायु महाराज, इनके सामने क्या है, MBBS, MD, DNB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? कुछ भी नहीं है वैल्यू उसका। अगर भजन करते हैं तो कुछ वैल्यू है, जीवन भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं तो कुछ वैल्यू है। तो ये जो है ये समझने के लिए हम तीर्थ में आते हैं, कोई रमणीक स्थान में जाके टाइम पास करने के लिए, खेलने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ का जो भाव है, इस भाव को पकड़ने के लिए हम लोग आते हैं। यहाँ का जो भाव है देवाहुति का, कितनी नम्रता से अपने पुत्र के नीचे शिष्य बनकर बैठी होगी, और कितना उसको, ऑफकोर्स उसको कोई कष्ट नहीं हुआ उसमें, हम लोग को होगा अगर हम लोग ऐसा करेंगे, अपने बच्चे के सामने बैठेंगे कथा सुनने के लिए तो हमको थोड़ा सा बोला ये मेरा बेटा है, समझो मेरा बेटा और ये बेटी समझो कथाकार बन जाते, भागवतकार, और मैं उसकी कथा में जाकर बैठता हूँ तो सब लोगों को बताऊंगा, जानते हो वो कथाकार जो ना वो मेरा बेटा है। हाँ उसमें अपना मतलब, मैंने भागवत नहीं पढ़ा है, मेरा बेटा भागवत अचर है लेकिन है वो मेरा बेटा। ये हमारी स्थिति है, तो उसमें भी हम लोग अपना गर्व करना चाहते हैं। तो वो स्वाभाविक रूप से देवाहुति कितनी नम्र होगी, इसने अपने बालक को बड़ा करके 5वें साल में उसको गुरु बनाकर उससे जीवन का पूरा बोध उसने सुना और जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त किया, और उस परिपूर्ण अवस्था में नदी बनकर वो अभी इस धाम को पवित्र कर रही है, निरंतर बह रही है। अपना मोक्ष तो उसको मिल गया लेकिन धाम को भी वो पवित्र कर रही है अपने स्पर्श से, अपने होने से, और भक्तों को कितना जन्म जन्मांतर तक प्रेरणा दे रही है वो। समाता देवाहुति की जय हो, कपिल देव भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हरे कृष्णा। अभी हम लोग कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।